नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को इसके लिए चुना गया है। इन्होंने वीरता, खेल और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस पर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के वीरतापूर्ण बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। अत्याचार के सामने अटूट साहस के प्रतीक और कम उम्र में उनका बलिदान भारतीय इतिहास के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2022 में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दौरान हर वर्ष वीर बाल दिवस आयोजित करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों से उनकी सरकार समाज के हर नागरिक के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर कल लखनऊ में एक जनसभा में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना उनकी सरकार का उद्देश्य है।
हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कई ऐसी पहल की जिनसे देश के विकास का परिदृश्य बदल गया। उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये राज्य विकास का पर्याय बन गया है। ओडिशा में कल 1,10,00,000 रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली नेता को संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस नक्सली की पहचान गणेश उइके के रूप में हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ओडिशा नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त होने के करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन को संतुलित करने के लिए यात्री किराए ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है। ये आज से लागू होगा। संशोधित किराए ढांचे के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेपाल में कल काठमांडू के सांस्कृतिक संस्थान में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 164वीं जयंती मनाई गई। महामना मालवीय मिशन ने भारतीय दूतावास के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अकथनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया है। 78 वर्षीय आवामी लीग नेता ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हथियाने वाला समूह धार्मिक अल्पसंख्यकों को जलाकर मारने जैसे भयावह कृत्य कर रहा है। कल क्रिसमस पर अपने संदेश में शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने दिल्ली, असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक हरियाणा, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड की स्थिति का भी अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।